देवियों सज्जनों, हम पिछले रविवार से भगवत गीता या गीता के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ का 13वां चैप्टर शुरू किया है। आज उसकी दूसरा भाग है। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे साथ पीछे आप उसको गुनगुनाएं। श्री भगवान वाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतत् यो वित्ति तं प्राहुः, यो वित्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। पिछली बार हमने चर्चाएं की कि ये शरीर एक फील्ड है, एक खेत है, जिसमें एक्टिविटीज होते हैं, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। और जो इसको समझता है इज द नोअर ऑफ द फील्ड, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को समझने वाला है। पिछली बार हमने इसके बारे में काफी चर्चाएं की। अगले सूत्र पर, श्लोक पर आइए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, खुल के बोलिए, सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। हे भरत वंश के संतान, आपको ये समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल बॉडीज। एक तो क्षेत्र होता है जो बॉडी है, द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। एक क्षेत्रज्ञ है जो इसको समझता है, और तीसरा एक है जो क्षेत्रज्ञ द नोअर ऑफ फील्ड एंड फील्ड दोनों का ओनर है, मालिक है। एक खेत होता है, उस खेत का एक किसान होता है जो खेत को समझता है, जो समझता है कि ये खेत मेरा है। समझने का मतलब सिर्फ इतना फर्क है, किसान कभी नहीं समझता है कि मैं खेत हूं, किसान ये समझता है कि ये मेरी खेत है। इसी तरह ये शरीर मेरा खेत है, जिसमें मैं बहुत कुछ चीजें करता हूं व होता है, और जिसका रिजल्ट मुझे मिलता है। जो फर्क है किसान और खेत में, मैं और मेरे शरीर में, सिर्फ इतना है कि किसान तो समझता है कि ये खेत मेरी है, पर हम नहीं समझ पाते हैं कि ये शरीर मेरी है। हम समझते हैं कि मैं ही शरीर हूं, इतना ही फर्क है किसान और खेत में, मैं और मेरे शरीर में। जब शरीर की बात आती है, उसमें मैं अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर पाता हूं। यद्यपि हमारे सामने हजारों इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे शरीर में ऐसे लाखों इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें साइंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, उसके बावजूद भी हम जब शरीर को खुद के साथ तादात्म्य करते हैं, एक बना देते हैं, यूनिफाइड कर देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम्स होता है। तो इसीलिए पिछले बार जो हमने चर्चा है कि जो दुख होता है, उन दुखों का मूल कारण है कि शरीर को खुद समझ बैठना, मैं शरीर हूं यही समझना। वन हु नोज द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड द नोअर ऑफ द फील्ड, ही नोज अबाउट थ्री डिफरेंट एंटिटीज, द लॉर्ड, द लिविंग एंटिटी एंड मैटर। जिस दिन व्यक्ति ये समझ जाए कि ये खेत क्या है, शरीर क्या है, उस दिन उसको ये समझ में आएगा कि मैं इस शरीर से अलग हूं, ये शरीर मेरे एक्टिविटीज का फील्ड है जिसमें मैं एक्टिविटीज करता हूं, पर मैं उसे अलग हूं। जिस दिन ये समझ में आ जाए, उस दिन आपको दो का डिफरेंशिएशन पता नहीं चलेगा, उस दिन आपको तीन चीजों का पता चलेगा, उस दिन आप तीन चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, उसी समय कर पाएंगे जिस दिन आप अपने आप को शरीर से अलग रियलाइज करने लगेंगे। और जो तीसरा, जिसे हम जो खुद शरीर नहीं है या शरीर के चलाने वाला मनाने वाला किसान नहीं है, अपितु उन सबका लीडर है। जैसे आप हमारे पास जमीन है और हम उस जमीन के मालिक होते हैं, पर जो देश का सुप्रीम होता है, जो सुप्रीम रूलर होता है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या गवर्नमेंट हो, जो भी होता है, वो सारे देश का मालिक होता है। वो जब चाहे तब कोई ना कोई रूल बना के आपके आपसे जमीन छीन सकता है, पैसे देके या पैसा नहीं देके, देश के हित के नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर या और किसी के नाम पर। आफ्टर ऑल ही इज द एक्चुअल रूलर ऑफ होल लैंड। तो मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है और मैं उस शरीर में कुछ भी कर सकता हूं, मैं शरीर का कैसा भी यूज कर सकता हूं और आप सब करते भी हैं। आप सब अलग अलग हैं क्योंकि आपने अपने आप को अपनी इच्छा से अपने ढंग से बनाया है। कभी कभी अपनी इच्छा भी जिसको आप बोलते हैं वो भी रिलेटिव होता है। कभी कभी माँ बाप की इच्छा से, पेरेंट्स की इच्छा से, नेबरहुड की इच्छा से, सोसाइटी के कल्चर से, नेशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर के हम मजबूरी में जिसको करते हैं उसको भी इंडिपेंडेंसी मानते हैं, आजादी मानते हैं। पर आफ्टर ऑल ये हमें फील होता है कि मैं अपनी मर्जी से अपने शरीर के साथ बिहेव करता हूं। मेरी मर्जी में सुबह उठूं ना उठूं, एक्सरसाइज करूं ना करूं, मेरी मर्जी में पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी मर्जी में नौकरी करूं ना करूं। कभी कभी हमारी आपकी मर्जी डिपेंड करता है, दूसरों पर डिपेंड करता है, मेरे नौकरी पर, मेरे बॉस पर डिपेंड करता है, मेरे कल्चर पर डिपेंड करता है, मेरे रिलीजन पर डिपेंड करता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल यू फील दैट इट्स माई विश, इट्स माई डिजायर, वट एवर आई एम डूइंग अकॉर्डिंग टू माई विश, माई डिजायर। Although it's not pure independent wish, it is also inspired, influenced, or suppressed, or overpowered by others, so many causes. But still, I feel that it's my wish. मैं जैसा भी अपने शरीर के साथ करूं। जब हम शरीर की बात करते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। पर उससे ऊपर भी एक होता है। जिस दिन मुझे वो पता चले, उस दिन मुझे ये भी पता चलेगा कि एक तीसरा तत्व भी है। जब जानो कि मैं शरीर नहीं हूं, जिस दिन आप समझ जाओ कि पेड़ जिसको आप बोलते हो, वो जो ट्रंक है पेड़ का, जो धड़ा है, वो पेड़ नहीं है। वैसे तो जनरली कॉमन सेंस हमें लगता है कि यही पेड़ है, ये जो बड़ा सा पेड़ दिखता है, जिसकी जो धड़ है, जो शरीर है। जो समझ थोड़ी सी समझदारी रखते हैं वो कहते हैं नहीं, ये पत्ते शरीर के मूल हैं, क्योंकि ये पत्तों के कारण शरीर जिंदा होता है। पत्ते अगर हरे हैं, ग्रीनी हैं, तो पेड़ जिंदा होता है। अगर जिंदा नहीं है तो पत्तों में ग्रीन लीव्स आते नहीं है। समझदार लोग समझते हैं कि ये पत्ते खाना लाते हैं सूरज की रोशनी से, और इसके कारण शरीर, ये पेड़ जिंदा है। पर जब व्यक्ति और समझदार हो जाता है, और ज्यादा डीपली जाता है, उसको पता लगता है कि नहीं, पेड़ का जीवन ना पत्तों में है, ना उस ट्रंक में है, ना उसके ब्रांचेस में है। वो तो इनसाइड द अर्थ है, जमीन के नीचे है। जब आप खोद के पता लगाते हैं, आपको पता लगता है जो रूट्स है, जो जड़ है, वही पेड़ों का जीवन है। उन्हीं के वही सोर्स ऑफ लाइफ है पेड़ों के। वो ना रहे तो पेड़ नहीं रहेंगे। इसीलिए पेड़ को आप काट दें, वो दोबारा उग जाते हैं। पर अगर पूरा रूट उखाड़ देते हैं, डी रूट जिसको आप कहते हैं, तो फिर पेड़ नहीं बचते, क्योंकि आपने सोर्स को उखाड़ दिया। पर सज्जनों देवियों, ध्यान रखिए, जिस दिन आप पेड़ के रूट तक पहुंच गए, आपको उस दिन दो ज्ञान होगा। एक ज्ञान ये भी होगा कि ये रूट्स जो है वही लाइफ के सोर्स हैं ट्रीज के। उस दिन आपको ये भी ज्ञान होगा, ये जो सोर्स ऑफ लाइफ है पेड़ के, वो भी किसी के द्वारा पालित होते हैं, वो भी किसी से सोर्स लेते हैं, वो सोर्स भी और किसी के सोर्स से चलता है। वो जमीन के, मिट्टी के अंदर जो पानी है, मिट्टी के अंदर दो जो तत्व है, उस धरती से वो इन्फ्लुएंस सोर्स लेते, धरती उनकी सोर्स है जहां से वो अपने जिंदा रहने के लिए चीजें लेती हैं। तो उस समय आपको दोनों ज्ञान होता है, एक तो पेड़ के जड़ का और जड़ का सोर्स उस मिट्टी का, उस धरती का। इसी तरह जब भी व्यक्ति को ये समझ होता है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इस शरीर का सोर्स और कुछ है, वो आत्मा है, उस दिन आपको ये भी ज्ञान होता है उस व्यक्ति को कि आत्मा भी कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसका भी एक सोर्स है जिसे हम परमात्मा या परमेश्वर कहते हैं। सो इसका मतलब तीन चीजें आपके सामने आए। जैसे ही आप अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दिया पिछले बार से, आपको समझ में आने लगा कि ये शरीर आप नहीं हो, फिर थोड़ा आप डीपली गए, आपको लगा कि ये माइंड भी आप नहीं हो, और डीपली गए, आपको लगा कि ये इंटेलेक्ट आप नहीं हो। जैसे जैसे आप डीपली चलते गए, रियलाइज करते गए, आपको समझ में आता गया कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, जिससे मैं कहता हूं आत्मा अलग है। तो दो चीजें अलग अलग आपके सामने आई, और जिस दिन आपको समझ में आया कि आत्मा अलग है, उस दिन आपको एक तीसरी तत्व का समझ आया कि एक परमात्मा है जो आत्मा का भी सोर्स है और जो शरीर का भी सोर्स है, इन सबका सोर्स परमात्मा है। जो आपके इंडिविजुअल लाइफ में होता है वही इस यूनिवर्सल लाइफ में भी होता है जी। इसलिए हमारे यहां कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ तुम्हारे शरीर में है अगर तुम्हें समझना है कि ये यूनिवर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनता है, उसके लेबल्स क्या हैं, तो आप खुद को समझ लो, अपने लाइफ को समझो। तो जिस दिन तुम्हें अपने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आत्मा समझ में आ जाए, बॉडी के स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये ब्रह्मांड यूनिवर्स भी कैसे बना है, क्या है। अगर तुम्हें आप इस पर समझना मुश्किल है तो यूनिवर्स को समझने की कोशिश करो, ब्रह्मांड को। तुम्हें अगर ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तुम्हारा अपना स्ट्रक्चर क्या है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तालाब है, एक एक छोटा सा पॉन्ड है, दूसरा ओशियन एक समुद्र है। दोनों की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है। दोनों के एट्रीब्यूट्स में, नेचर में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उनकी मेजरमेंट में अंतर है। उस वो पानी का एक रिजर्वर है, जो छोटा सा रिजर्वर है आप इसको पॉन्ड बोलते हो, जो बहुत बड़ा रिजर्वर है उसके आपको ओशियन समुद्र बोलते हो। वो दोनों के क्वालिटीज में कुछ समानताएं होती हैं। इसी तरह जो शरीर में होता है, शरीर उस पॉन्ड की तरह है, यूनिवर्स एक ओशियन की तरह है, जिसमें बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारे पानी के रिजर्वर आ सक समा सकते हैं, बहुत सारे जमीन आ सकता है। एक छोटे से पॉन्ड में बीच बीच में छोटी छोटी आइलैंड होते हैं, और समुन्द्र के बीच में इतने बड़े बड़े आइलैंड होते हैं कि आपका अमेरिका होता है, किसी आपके आपके ऑस्ट्रेलिया होता है, आपके एशिया होता है, आपके यूरोप होते हैं, कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं उस ओशियन के बीच में, वो आइलैंड्स होते हैं सारे। इसी तरह इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे शरीर में छोटी छोटी चीजें कम है, इंस्ट्रूमेंट्स वही होते हैं। आपकी घड़ी में जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जो आप रिस्ट वॉच पहनते हो, उसमें बड़े छोटी छोटी शटल मशीन्स होते हैं। जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उसमें बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, मशीन्स वही होते हैं, उसी टाइप के होते हैं। तो इसका मतलब अगर तुम्हें समझ में आ गया कि ये शरीर एक कुछ है, आत्मा कुछ, उसको समझने वाला, यूज करने वाला, यूजर कोई दूसरा है, और उन सबका ओनर कोई तीसरा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये संसार भी जो है वो समथिंग डिफरेंट देन दोज हु लिव इन दिस यूनिवर्स। ये संसार एक अलग चीज है और उसमें रहने वाले चीजें अलग चीज है, रहने वाले जो लिविंग बींग्स हैं वो अलग चीज हैं, और ये संसार और बींग्स, इन सबका कंट्रोलर, उन सबका रूलर, उन सबका मास्टर कोई दूसरा तीसरा चीज होता है। इसी को ये जो यूनिवर्स है उसका ओवरऑल जो होलिस्टिक फॉर्म है, हमारे यहां उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब जो भी मैटेरियल यूनिवर्स है, वो शटल फॉर्म में है या ग्रास फॉर्म में है या एलिमेंटरी फॉर्म में है या पार्टिकल फॉर्म में है, वो प्रकृति है। और उसको जो एंजॉय करता है, जो उसका यूज करता है, वो हम आप पेड़ पौधे पशु पक्षी हाथी घोड़े मछली मगरमच्छ जो भी जिसके कीड़े मकोड़े चींटी जिसके अंदर भी जीवन है जो लिविंग बींग जिसको आप बींग कहते हैं वो सारे यूजर हैं, वो उसको यूज करते हैं एंजॉय करते हैं अपने अपने लिमिटेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि वो क्यों हमारे तरह यूज नहीं करता है। आपके घर में भी कौन सा हर आदमी है? आपके घर में सारी चीजें रखी हुई हैं, पर क्या हर आदमी पूरी तरह उतना ही यूज करता है जितना एक मेंबर करता है? नहीं करता है। कोई चार रोटी खाता है, कोई एक रोटी खाता है, कोई चार घंटे टीवी देखता है, किसी को आप आधा घंटा भी अलाउ नहीं करते हो। तो आपके घर में भी सामान होते हैं, पर यूज करने वाले व्यक्ति का अपना लिमिटेशन होता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कितना यूज करेगा। बट स्टिल ही और शी इज ए यूजर एज यू आर। वो चींटी भी इस धरती संसार को यूज करता है, यूज करने के लिए ही है, उपभोक्ता है, हम भी भोगते हैं। तीसरा चीज है, एक तो है जो यूनिवर्स है जो जिसको कंज्यूम करना है, और दूसरा है कंज्यूमर जो हम आप सब हैं। दुनिया के जितने करोड़ों तरह के स्पाइसेस हैं वो सब उसके कंज्यूमर हैं। और तीसरा होता है वो ईश्वर, जिसका मतलब ईश्वर का लिटरेरी मीनिंग है मास्टर रूलर, जो रूल करता है, जो डोमिनेट करता है, जो कंट्रोल करता है, जो बनाता है बिगाड़ता है। ये तीनों की कॉम्बिनेशन से ये संसार है। एक कर्ता क्रिएटर है, एक क्रिएशन है, और एक क्रिएशन को एंजॉय करने वाला एंजॉयर है। तो आत्मा परमात्मा और ये संसार। पर व्यक्ति जिस दिन समझ जाए, पानी को समझ जाए, फिर उस दिन ही पानी और पॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है वो समझ जाए, फिर उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में जितने भी पॉन्ड्स हैं, जितने भी लोटे हैं, बर्तन हैं, जितने भी नदियां हैं, उन सबके अंदर पानी एक ही होता है, यूनिवर्सल वाटर। सबकी पानी एक ही टाइप की, सबकी क्वालिटी वही है, H2O1। वो पानी समुंदर की हो, आपकी घर की हो, आपके टैप की हो, पॉन्ड्स की हो, रिजर्वर की हो, गंदे नाले की पानी हो, साफ प्यूरिफाइड वाटर हो, सब वही क्वालिटी वाले होते हैं, H2O1। सब दिया आप जलाते हैं, हर दिया के अंदर ज्योति जलती है। जिसको समझ में आ गया ज्योति और दिया के अंदर क्या फर्क है, फिर उसको ये नहीं फर्क रहेगा कि दिया ये दिया उस दिया से अलग है, क्योंकि हर दिया में जलने वाली ज्योति तो एक ही होता है, लाइट इज द सेम। आपके घर में फ्रीजर चलता है, हीटर चलता है, बल्ब्स जलते हैं, पंखे चलते हैं, टीवी चलता है, अलग अलग चीजें चलते हैं, पर जिस दिन आपको समझ में आ जाए इनका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है, वो फ्रीजर में भी वही है, हीटर में भी वही है, टीवी में भी वही है, तो ये तभी समझ में आ जाएगा जब आपको ये तो पहले समझ में आए कि ये शरीर और मैं ये दोनों क्या है। समझ का अर्थ रियलाइज करना होता है। जिस दिन आप ये रियलाइज कर जाते हैं वो समझ में आ जाएगा, उस दिन फिर आपको हर खेत में, हर शरीर में आपको उस सर्वव्यापी ईश्वर का भी अनुभव होने लगेगा। शरीर के साथ खुद को जोड़ना मेपन होता है, आईनेस होता है, जिसको आप ईगो कहते हैं कि आई और मीनेस। शरीर के साथ अपने आप को अलग कर देना, सेपरेट करके रियलाइज करना, तो जो पहला इंसिडेंट होता है कि हमारा जो आईनेस है, जो मीनेस है, जो ईगो है, वो टूटता है। वंस आपका ईगो आईनेस टूटता है तो फिर आपका नॉलेज का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, और वो जो हायर क्वालिटी ऑफ नॉलेज है उसमें फिर आप और एक शॉर्टलिस्ट फॉर्म को देखते हैं, वो है परमात्मा। So one should not confuse the three in their different capacities. This material world, which is the field of activities, is called nature, prakriti, and the enjoyer of nature is the living entity, and above them both in the supreme controller, the supreme being. अगले श्लोक पर चलते हैं मेरे साथ बोलिए तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च खोल के बोलिए तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारीयतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. तो कृष्ण कहते हैं कि आप सुनो अर्जुन, वो क्षेत्र, वो जो फील्ड जिसके बारे में मैंने तुम्हें हिंट्स दिया, वो क्या है, किस तरह का है, वो किसका मॉडिफिकेशन है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस, उस खुद में भी मॉडिफाइड होता है, उसका सोर्स क्या है, किसके द्वारा वो प्रोड्यूस्ड होता है, किसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, कौन उसको यूज करता है, वो सब कुछ डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा, और तुम उसको सुनने की कोशिश करो. तो जब सब कुछ मिट जाए, जब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान धीरे 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 मिटता चला जाए, शरीर के, मन के, बुद्धि के, जो अंतिम में बच जाएगा, जो संसार में आपका शरीर के एक एक अंग नष्ट होता जाए, चला जाए, आपका शरीर चला जाए, मन चला जाए, बुद्धि चली जाए, आपका ब्रेन चला जाए, जो आखिर में जो बच जाता है, जो कभी नहीं चला जाता, कभी नष्ट नहीं होता, जिस आत्म तत्व की बात हम करते हैं, वो कैसा है, क्या है, ये जानना मुश्किल काम है, पर समझने की जरूरत होती है. ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको किसी ने कहा कि शरीर के अंदर, शरीर अकेला कुछ नहीं, शरीर के अंदर कोई चीज है जो शरीर को चलाता है, तो आप लैबोरेटरी में ले जाएंगे कि जिंदा आदमी को काट फाड़ करके देखेंगे, कहेंगे देखो ये बॉडी है, ये बॉडी के अंदर के ये फ्लेश हैं, ये बोन्स हैं, ये देखिए नर्व सिस्टम है, ये हार्ट है, ये लीवर है, ये वगैरह वगैरह, ये सब इंस्टेंटाइन है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है, पर यहां कौन सी चीज की बात आप कर रहे हो जिसके कारण बॉडी चलता है, ऐसा तो कुछ है नहीं है. और आपको सचमुच कहीं मिलेगा नहीं, आप काट फाट लगने लगेंगे, पर हम एहसास करते हैं एक बॉडी जिसको हम डेड बॉडी बोलते हैं, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, और मेरे पास भी एक शरीर है, उसमें एक्शन है, रिएक्शन है, सब कुछ है, क्या अंतर है, कोई चीज तो मिस है. वो जो चीज मिस है उसको हम आत्मा कहते हैं, पर उसको जानने की तरीका वो नहीं है कि आप काट पीट के जानेंगे. दुनिया में हर चीज को काट पीट के नहीं जाना जाता ना, हर चीज को आप लैबोरेटरी में नहीं जान सकते. लैबोरेटरी तो होता है, पर हरेक का अपना अपना टाइप का लैबोरेटरी होता है. आप केमिस्ट्री को फिजिक्स की लैबोरेटरी में नहीं समझ सकते हो, फिजिक्स के मैटेरियल एलिमेंट्स को आप केमिस्ट्री के फिजिक्स नहीं समझ सकते हो, आपके लिए बायोलॉजी के लिए दूसरे तरीके से अपनाने पड़ेंगे, आपको केमिस्ट्री के लिए दूसरे टाइप के लैबोरेटरी सेटअप करना पड़ता है. पर जब आप बॉडी के लैबोरेटरी में आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए नहीं मिलते. इसलिए ध्यान रखिए, मॉडर्न साइंस में आत्मा का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हो ही नहीं सकता. आत्मा छुरी काट पीट करने से मिलता ही नहीं है, वो तो उसके अलग टाइप की लैबोरेटरी होती है, जिसको आप कहते हैं मेडिटेशन, जिसको आप कहते हैं भक्ति, डिवोशन, जिसको आप कहते हैं रियलाइजेशन. जो रियलाइज्ड है वही समझ सकता है. आप कैसे बताएंगे साइंटिफिक वे से लैबोरेटरी में ले जा करके रसगुल्ला और लड्डू के अंतर क्या अंतर है टेस्ट में, वो ये तो बता देंगे इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या अंतर है कि इसमें बेसन को कैसे बनाया गया, उसमें पनीर को बनाया गया, उसमें ये बनाया गया वगैरह वगैरह, पर जो टेस्ट में अंतर है, अगर आपने कभी ना मिठाई खाई ना रसगुल्ला खाया, और मैं आपको समझाऊं कि देखो ये मिठाई है, वो मिठाई क्या होता है, बोले ये स्वीट है, ये रसगुल्ला क्या होता है, बोले ये स्वीट है, समझने वाला समझा था चॉकलेट जैसा ही होता होगा, जो चॉकलेट नहीं खाया कैंडी खाया बोला अच्छा कैंडी जैसा होता होगा, जिसने चॉकलेट कैंडी कुछ नहीं खाया चीनी खाया बोला चीनी होता होगा, पर क्या सचमुच लड्डू चीनी होता है, लड्डू का टेस्ट और रसगुल्ले का टेस्ट भी चीनी होता है, चॉकलेट का टेस्ट भी चीनी होता है, नहीं होता है, फिर कौन डिफाइन करेगा, फिर आप कहेंगे अच्छा इसकी क्या टेस्ट है, इसको इसको वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं, इसको लैबोरेटरी लेकर चलते हैं, वो बता देंगे साइंटिस्ट आपको, देखो रसगुल्ले में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर ये क्वालिटीज होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, लड्डू के अंदर ये जो मिला हुआ है ये उनका ये नुकसान है ये फायदा है। सवाल ये नहीं था, सवाल ये है कि लड्डू का टेस्ट और रसगुल्ले के टेस्ट में क्या अंतर है, और अंतर तो सिर्फ वही बता पाएगा ना जो खाता है। मैंने लड्डू खाया रसगुल्ला भी खाया, मैं ही जानता हूं लड्डू और रसगुल्ले में क्या अंतर है, मैं आपको बता सकता हूं तो क्या बताऊं, बताऊंगा दोनों अंतर है, फिर मैं आपको कैसे कन्विंस करूं, देयर इज नो अदर वे टू कन्विंस यू एक्सेप्ट रियलाइजिंग इट, मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूं कि रियलाइज करो, खाओ, एक्सपीरियंस करो, ये जो एक्सपीरियंस करना भी अपने आप में एक लैबोरेटरी है। तो जिन चीजों की चर्चा हम पिछले संडे से भी बात कर रहे हैं कि शरीर और आत्मा परमात्मा, वो किताब पढ़ने से शास्त्र पढ़ने से सुनने से तो एक इंफॉर्मेशन मिलता है, एक मोटा मोटी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, पर उसी को ज्ञान समझ बैठना बड़ी गलती होती है, उसको जब खुद हमें रियलाइज हो, वो रियलाइजेशन जो हो वही असली ज्ञान होता है, उससे आपको खुद को मुझे खुद पता चलेगा कि क्या अंतर है शरीर में, क्या अंतर है आत्मा में, क्या अंतर है परमात्मा में। इसीलिए हमारे यहां पूर्वजों ने हमारे लिए व्यवस्था की थी, जिसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, कि रोज सुबह शाम कम से कम दो बार नहीं तो एक बार, पहले तो दो ही बार था, दो एक बार की बात हम क्यों छेड़े, किस और वो भी समय बताया कि सुबह का समय जहां ज्वाइंट सेशन होता है, क्योंकि प्रॉब्लम सारा ज्वाइंट में, शरीर और आत्मा दोनों यूनिफाइड हैं, एक हो चुके हैं, उनको समझना है, आत्मा और परमात्मा को एक समझ बैठे हैं, उनको समझना है, तो समझने का समय जो हमें दिया, समझने के लिए क्या करें, बोले आप डिवोशन भक्ति करो, ध्यान करो, उसके समय भी बताया कि बोले उन्हीं समय पर करना जहां जॉइंट होता है, सुबह और शाम क्या होते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, संध्या, आपको पता है भक्ति का प्राचीन नाम क्या होता है, द एंशियंट नेम ऑफ डिवोशन और वर्शिपिंग इज कॉल्ड संध्या, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संध्या, ट्विलाइट प्रेयर, ये ट्विलाइट संधि का एक्चुअली मतलब होता है जोड़, जॉइंट, दो चीजों को जोड़ना, दिन अंधेरा और प्रकाश के बीच में जो जो जहां जो जॉइंट होता है उसी को हम संध्या कहते हैं, वो सुबह भी है वो शाम भी है। तो ऋषि मुनियों ने, उनके और भी रीजन्स होते हैं क्यों सुबह शाम ही भक्ति करनी है, उसके और भी कारण होते हैं, क्योंकि उस समय आपका मन शांत रहता है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो दुनिया से संपर्क करने से पहले, दुनिया के साथ लिंक जोड़ने से पहले, तो आप जो भक्ति करते हैं तो आप बिल्कुल शांत होते हैं, आपके मन बहुत अनडिस्टर्ब होता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, तो आसान होता है आपको मन लगाने में, संध्या में भी इसी तरह, तो वो अलग कारण है, पर उसका एक सिंबॉलिक रीजन है कि ये दोनों समय ही होते हैं जहां जॉइंट होता है, और उसी समय पर जब आप भक्ति में डूबते हैं तो आप दोनों को रियलाइज करते हैं, इसी इसीलिए कहते हैं विवेक शक्ति पैदा होती है जब आप भजन कीर्तन भक्ति करते हैं, वो भक्ति में सब कुछ आता है। तो उसमें जो आपको अचीव होता है जब आप रियली भक्ति करते हैं, एंड व्हाट इज दैट अचीवमेंट, दैट इज कॉल्ड विवेक शक्ति। द डिस्क्रिमिनेटिव पावर, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कल तक जो इल्यूशन के कारण मैं सबको एक समझता था कि मैं एक हूं, ये शरीर भी मैं ही, ये सब ये शरीर एक ही चीज, शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं, प्रकृति में आत्मा में कोई अंतर नहीं, ये जो अंतर ना होने की इल्यूशन था, उस इल्यूशन को दूर होना, दैट इज कॉल्ड विवेक शक्ति। इसीलिए हर व्यक्ति को हमारे ऋषि मुनियों से लेकर शास्त्रों ने कहा प्रतिदिन कुछ समय निकालें खुद के लिए। ये भक्ति ईश्वर के लिए नहीं होता है, ईश्वर थोड़े ही दुखी बैठा है कि आप उसको तारीफ करोगे, खुश हो जाएगा, बोलेगा अच्छा लो मेरा मूड ऑफ था और तुमने मेरी प्रेज किया, खुश हो गया, लो तुम्हें वर दे दिया, दो के जगह चार, दो लड़कियों के जगह चार बेटे होंगे, 2 करोड़ के जगह 8 करोड़ होंगे, 1 बिल्डिंग के जगह 8 बिल्डिंग होंगे, ऐसा थोड़े ही भगवान बैठा है। भक्ति खुद के रीप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। आप ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आप बिल्कुल प्योर बन जाते हैं, वो आपकी जो प्योरिटी है वो वर्थ करता है, वही काम की चीज है ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर का कोई डिमांड नहीं है, कोई उसका कंडीशंस नहीं है उसको पाने के लिए, क्योंकि हम इम्प्योर हैं। इम्प्योर इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि वो इम्प्योर का मतलब नहीं कि आप पैदा इसी बड़े पापी हैं, यू आर ए सीनर बाय बर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर टोटली प्योर बाय बर्थ। हमारा माइंड इतने सारे चीजों में फंसा हुआ होता है कि इवन हम किसी के बारे में सोचते भी है ना, वो प्योर थॉट नहीं होता है, उसमें भी मिक्सचर होता है। इवन पति पत्नी के बारे में सोचता है, पत्नी पति के बारे में भी सोचता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सचर होता है, वो पैसा है, घर है, बच्चे हैं, अपना ईगो है, बहुत प्योरिटी का बहुत कम कंसेप्ट आ पाता है, इवन इन रियल लाइफ भी नहीं आ पाता है, और भक्ति में भी कहां से आएगा। इसीलिए पूरा का पूरा जो 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 पर्पस है जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का, उसका है कि खुद को प्योर बनाना। भक्ति से, ध्यान से, पूजा से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। वो शुद्धता ही हमारी योग्यता को डिसाइड करता है, हमारी एबिलिटी को, हमारे वर्थ नेट को डिसाइड करता है कि हम उसको जान पाएंगे कि या नहीं जान पाएंगे। ईश्वर का कोई कंडीशन आपके लिए नहीं होता है ना, आप पैदा इसी कोई इम्प्योर होकर आते हैं, उसको क्लियर करना होता है। हम लाइफ में आते जाते रहते हैं और धीरे धीरे अटैच्ड होते जाते हैं बहुत सारे चीजों के प्रति, हर चीज में इम्प्योरिटी होती है। इसीलिए जीवन में थोड़ा सा समय निकालने की जरूरत होती है खुद के बारे में। जो स्मार्ट लोग हैं वो खुद के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे जो 18-18, 20-20 घंटे काम, पहले तो जब नया नया रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोग पैसा कमाने और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के चक्कर में 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे मेहनत करने लगे। जैसे जैसे व्यक्ति स्मार्ट बनता गया, समझदार बनता गया, उसको समझ में आया ये मैं 20 घंटे काम क्यों कर रहा हूं, जो पैसा कमाने के, पैसा कमा के क्या करूंगा, खर्च करने की टाइम नहीं है, खर्च करने के लिए शरीर नहीं है, जब तक मेरे पास पैसा बच जाता है तब तक मैं बुढ़ा हो जाता हूं, तब तक मेरे शरीर में ना खाने की शक्ति रहती है, ना भोगने की शक्ति रहती है, ना देखने की शक्ति रहती है। तो स्मार्ट लोगों ने धीरे धीरे टाइम को कम किया। अब देखिए जिस जिस देश में जितना एडवांस्ड देश है वहां काम का समय कम होता जा रहा है। अब 8 घंटे आप काम करते हैं, जो जो एक आइडियल टाइम होता है उसमें आपको 2 दिन छुट्टी मिलती है, ये कोई बकवास नहीं है, ये कोई ऐसा उठपटांग डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो आप कमाते हैं किसके लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद के बारे में जब भूल जाते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो आदमी करता रहता है, कमा कमा करके थक करके बुढ़ा हो गया, खाए बच्चों ने बिना काम किए निकम्मे होकर के एंजॉय कर रहे हैं, और आपने क्या किया, कुछ नहीं, कमा कमा करके रख गए। तो जो स्मार्ट कम होगा वो अपने बारे में कम ध्यान देगा, जो ज्यादा स्मार्ट होगा वो खुद के बारे में ज्यादा ध्यान देगा। और भक्ति करना स्मार्टेस्ट वे है, जहां आप अपने डीप सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पता लगाते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिलेशनशिप हैं, मेरे सब पास फ्रेंड सर्कल हैं, मेरे पास सुंदर शरीर है, मैं हेल्दी हूं, उसके बावजूद भी मैं दुखी क्यों हूं, मैं परेशान क्यों रहता हूं बीच बीच में। अबे दुखी का मतलब ये नहीं कि आप भूखा रहते हैं तो दुखी रहते हैं, अबे दुखी तो कुछ भी हो सकता है। तो आदमी जो ढूंढता है उसको कोई आंसर नहीं मिलता, तो खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना। वो खुद के लिए टाइम क्या है, वो जो रियलाइजेशन करने का रास्ता है वो वही है, ध्यान, भक्ति, प्रार्थना, उपासना। क्योंकि आखिर में क्या होगा जी, जो हम कमाते हैं ना शरीर से, मरना तो सबके होता है, मरने का मतलब शरीर का नष्ट हो जाना। और जब मरते हैं सिर्फ शरीर नष्ट नहीं होता है जी, शरीर के द्वारा कमाया हुआ हर चीज आपके लिए बेकार हो जाता है। मैं शरीर के द्वारा जो कुछ भी कमाया, पैसे, घर, संपत्ति, फ्रेंड सर्कल, नाम, नेम, फेम, वो मरने के बाद लोग आपके फोटो में माला चढ़ाते हैं, आपकी मूर्तियों पर, आपका क्या फर्क, आपको थोड़े ही पता लगता है किसी ने गालियां दी कि माला चढ़ाई, वो तो पॉलिटिक्स हो जाती है, वो तो सोशल, आपको थोड़े, वो तो पब्लिक, आपके जो फॉलोअर्स हैं उसका वो फायदा उठाते हैं। आपके साथ आपके शरीर के द्वारा कमाया हुआ कोई चीज नहीं जा, इसका अर्थ नहीं कि आप कमाए नहीं, पर शरीर जब तक है शरीर के लिए आप कमाए। पर हमारा क्या होता है, हम तो 18 पुस्तकों के लिए भी कमाते तब भी सोचते कम पड़ रहा है। कम से कम 23 घंटे शरीर के लिए कमाए, 1 घंटे खुद के लिए कमाए। क्योंकि जो चीज आपने खुद के लिए कमाया वही सिर्फ आपके साथ जाएगा। और खुद के लिए क्या कमाया, जो आपने मन के जितने माइंड को आपने प्योर बनाया, अच्छा बनाया, शुद्ध बनाया, वही मन आपके साथ जाता है अगले जीवन के लिए। और मन को आप जैसा बनाकर ले जाएंगे वो वैसा चला जाएगा, शरीर के द्वारा कमाया हुआ चब रह जाए। तो इसीलिए तो स्मार्टर डिसीशन ये है, ज्यादा स्मार्टर डिसीशन ये है कि हम जिंदगी भर जो टाइम लगाते हैं इकट्ठा करने में वो शरीर के सुख के लिए होता है। तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 घंटा हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा के सुख के लिए कोशिश करें, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा, पर कोई ना कोई समय जरूर निकालें खुद को समझने के लिए। और उसमें क्या आप समझेंगे, जो आगे जाकर के हाउ दिस बॉडी इज कंस्टिट्यूएटेड, द मैटेरियल्स ऑफ हु इज दिस बॉडी इज मेड, अंडर हुज कंट्रोल दिस बॉडी इज वर्किंग, हाउ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, वेयर फ्रॉम द चेंजेस आर कमिंग, व्हाट द कॉजेस आर, वन शुड ऑल्सो नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल बींग एंड द सुप्रीम बींग, द डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस, देयर पोटेंशियल्स एटसेट्रा। इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं, अब पढ़ाई करते हैं समझने के लिए। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, कभी ये भी पढ़ लिया करिए इन चीजों के बारे में, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, इसको समझने के लिए भी कुछ समय निकालिए, कुछ किताबें पढ़िए, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करिए, कुछ रियलाइज करिए, तो आपको हमारे जीवन के, हम अगली पीढ़ी के लिए, आप अपने जीवन के अगले लेवल के लिए हम कुछ तैयारी रख सकते हैं। और सज्जनों देवी, और एक छोटी सी बात करके आज के इस श्लोक के साथ विराम करते हैं। जो जो नॉलेज आप पाने की कोशिश करते हैं वो नॉलेज पढ़ने से नहीं आता, सुनने से नहीं आता है। पढ़ने और सुनने से सिर्फ हमें शब्द मिलता है, वर्ड्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो इंफॉर्मेशन जब तक यूज में ना आए तब तक वो यूजलेस होते हैं। जैसे कि आप न्यूज सुनते हैं, वो न्यूज से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन आपके सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो होता है और बेकार, वैसे तो यूजलेस होता है, किसी काम में नहीं आता है। पर बहुत स्मार्ट लोग होते हैं समाज में, जो उस न्यूज को देख करके उसको कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, अगर पॉलिटिकल न्यूज है पॉलिटिशियंस उसका यूज करते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल न्यूज है तो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं यूज करते हैं, बाकी आम जनता तो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, एंटरटेन करता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। वो ज्ञान नहीं होता है जब तक वो इन्फॉर्मेशन यूज में नहीं आता। जो बोला जो आप सुनते हैं बोलने से, या जो किताबें पढ़ के जानते हैं, या मैं या आप सब पढ़ते हैं या जानते हैं, वो सिर्फ शाब्दिक ज्ञान होता है, वर्डली नॉलेज होता है। जो रियल नॉलेज मुझे और आपको मिलेगा या मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस से मिलता है, खुद की रियलाइजेशन से मिलता है। और यही मुख्य टूल है, दिस इज द मेन टूल टू नो अबाउट मी। यही खुद को जानने के लिए तरीका है। अगले बार हम दूसरे श्लोकों की चर्चा करेंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।